نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة النساء آيات نمبر 163 سے اس کو مکمل کریں گے إن شاء الله تعالى 176 تک. اللہ تعالى ہم سے اس سورة کو قبول فرمائے. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب نے سوال کیا، اور سوال کیا تھا، خاص طور پہ یہود کی بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں آسمان سے کہ ہم اس کو دیکھیں اترتے ہوئے، یا مطلب یہ کہ تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو، یا ایسی مطالبات کیے جو کہ عجیب و غریب سے تھے. اور یہ آیت نمبر 153 میں آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ سے کس طرح ایسے مطالبے کر سکتے ہیں، اور ان کو تو زیب نہیں دیتا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تھے تو دیکھا انہوں نے ان سے کتنے بڑے مطالبے کیے تھے، پھر کون سا یہ مان گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے بات کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، پھر ان کے اوپر تو تور کھڑا کر دیا لا کے، یہ تو پھر بھی نہیں مانے تھے. اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کو یہاں پہ مینشن کیا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں. اب یہ کس منہ سے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کر کے دکھاؤ، انہوں نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو ہے نبی، آپ اس سے رنج نہ کریں کہ ان کو شاید یہ نظر آ جاتا تو یہ ایمان لے آتے، یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں. لیکن پھر 162 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان میں کوئی لوگ ہیں ایسے جو راسخون فی العلم ہیں. وہ کیسے لوگ ہیں؟ پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے گا. اب آتا ہے اصل میں جواب ان کی بات کا. پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ اس قسم کا مطالبہ کریں. ان کی تو یہ ہسٹری رہی ہے، تو ان کی ہسٹری کی کچھ گلمپسز دکھائی گئی ہمیں، کچھ جھلکیاں دکھائی گئی کہ دیکھو یہ کام کرتے تھے. اور اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. انا اوحینا الیکا، ہم نے آپ پر وحی کی. انا کہنے کا مطلب کیا؟ انی کیوں نہیں کہا گیا؟ بے شک میں نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، تو ہم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک، دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک شاہانہ خطاب کا انداز ہے، شاہانہ انداز ہے نا، ایک بادشاہوں کا جیسے انداز ہوتا ہے ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پلورل کے لیے، جمع کے لیے نہیں ہے. تو بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما جیسا کہ اوحینا الی نوح، ہم نے وحی کی تھی اسی طرح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی، اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھی، نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی آئی تھی. اور وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ. لغوی معنی اس کا ہوتا ہے خفیہ اشارہ، جو بڑی صورت سے تیزی کے ساتھ کیا جائے کسی کو اشارہ، کہ یعنی کوئی کسی کو اور کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وحی اتری بھی ہے، اور وہ وحی جیسے کہ نوح علیہ السلام پہ اور ان کے بعد کے نبیوں پہ. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو کیوں مینشن کیا گیا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، صاحب شریعت نبی تھے، ان کو بھی پاس شریعت آئی تھی، اور ان کے بعد بھی نبیوں کے اوپر وحی نازل کی گئی. اور وحی کی جو صورتیں ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، وحی نازل کرنے کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ کی. مثال کے طور پہ ایک صورت کیا ہے؟ وحی قلبی کی صورت، कि दिल में अल्लाह ताला बात डाल देता है, दिल में इल्का कर देता है, दिल में फूंक दी जाती है कोई बात जिसको कहे ना, तो दिल में ख्याल डाल दिया जाता है। ये एक वही होती है और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी एक और सूरत भी है वही करने की, और वो है वही जो अल्लाह ताला किसी के साथ कलाम करे, मिन वरा ये हिजाब, हिजाब के पीछे से, जैसे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैह सलाम को पुकारा था, तूर पे मूसा अलैह सलाम से बातें की थी ना, और ये हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, आगे भी आ रहा है मूसा कलीमुल्लाह थे। तो अल्लाह ताला यानी डायरेक्ट किसी से हिजाब के पीछे से भी कलाम कर सकता है, सामने यानी खड़ा करके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया मेराज पे बुला के। तो ये एक सेकंड सूरा है, सूरत है वही की। तीसरी सूरत वही की है, वही मलक की, मलक के जरिए यानी फरिश्ते के जरिए वही, और वो उस सूरत में क्या होता है कि फरिश्ता वही लेके आता है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसी वही आती थी तो बाज दफा तो फरिश्ता इंसानी सूरत में आता है, जैसे दहिया कल्बी की सूरत में, बाज दफा अपनी असली सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा। तो ये सूरत भी एक वही की सूरत है। जब इंसानी सूरत में जिब्राइल अलैहि सलाम आते थे तो ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी आसान होती थी, और वो सूरत जिसके अंदर आपके दिल में बात डाली जाती थी, आपके दिल पे वही उतरती थी, वो सूरत जो थी वो बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल थी। आपको ऐसे आवाज आती थी जैसे घंटी की आवाज होती है, और इतनी सख्त होती थी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सर्दी में भी आपको पसीना आ जाता था, इतनी सख्त होती थी। तो ये वही की चंद एक सूरतें, आपको पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही कैसे नाजिल होती थी, कैसे आती थी वही, क्या तरीकाकार था। तो ऐसा नहीं है कि बगैर हिजाब के अल्लाह ने बात की हो, ऐसा नहीं है कि कोई और तरीके हो, यही तीन तरीके थे वही के। और इसी तरह बाकी नबियों पे भी वही आती रही, सारे नबियों के साथ तो अल्लाह ताला ने मिन वराए हिजाब नहीं बात की, मगर वही की इन बाकी सूरतों में से सूरतें बाकी नबियों पर भी आई, और नूह अलैहि सलाम और दूसरे अंबिया भी इसमें शामिल हैं। व अवहैना इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात, और ये क्या बात करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इतने ज्यादा इस बात में क्यों शक कर रहे हैं कि आप हमें बताएं, आप हमें दिखाएं कि क्या आपके ऊपर वही आती है कि नहीं आती, और कि हम कैसे यकीन कर लें, आप हमें उतार के दिखाएं या तख्तियों पे दिखाएं, क्या ये यकीन नहीं करते कि पहले भी नबी आए थे उनके ऊपर भी तो वहियां उतरती थी, और वो कौन सा किताबें ले आए ऐसी कि जो लिखी नहीं थी। इब्राहिम अलैहि सलाम आए, इस्माइल अलैहि सलाम, इसहाक अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम, उनके पास तो कोई तख्तियां नहीं थी, उनके ऊपर भी तो ये ईमान रखते हैं। और असबात कौन है, याकूब अलैहि सलाम की नस्ल से आगे जो पैगंबर आए हैं वो असबात, यानी उनकी जुर्रियत, उनके बच्चों में, उनकी नस्ल में, बनी इसराइल में आपको पता है ना कितने अंबिया आए। तो ये सारे नबी जो हैं इनके बारे में तो तुमने कोई इख्तलाफ नहीं किया, उनको तो तुमने नबी माना, फिर क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में इतनी मुश्किल। वा ईसा व अयूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, और बाकी भी नबी, ईसा अलैहि सलाम, अयूब अलैहि सलाम, यूनुस अलैहि सलाम, हारून और सुलेमान अलैहि सलाम, इनको भी तुम मानते हो। और देखें आप इतनी एक बड़ा एक बारीक सा नुक्ता है यहाँ पे कि ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो हालांकि एंड में आए, एंड में आए हैं बनी इसराइल में, उनके बाद बनी इसराइल में कोई और नबी नहीं आया, उनके बाद फिर बनी इस्माइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम आए हैं बस, लेकिन उनका जिक्र बीच में है, मिडल में है। अच्छा, अब क्या है कि यहूदी जो थे वो इन सारे पैगंबरों को मानते थे सिवाय ईसा अलैहि सलाम के। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम का जिक्र अगर आखिर में किया होता तो ये पहले सबको मान लेते कि हम उन सबको मानते हैं, लेकिन ये आखिरी वाले को नहीं मानते। जब मिडल में ले कर अल्लाह ताला ने इनको रखा है तो यानी अब अगलों को भी मानते हैं, पिछलों को भी मानते हैं, मिडल वाले को कैसे नहीं मानते फिर तुम, तो उनको अलग से नहीं। और देखें आप ये एक फर्क है भी वा और फा में, अगर फा होता है ना तो उसमें ये होता है कि ये चीज हुई उसके बाद ये चीज हुई, ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं कि अहमद दाखिल हुआ फिर कासिम दाखिल हुआ, तो इसका मतलब क्या कि अहमद के बाद कासिम दाखिल हुआ। अगर हम कहते हैं अहमद और कासिम दाखिल हुए तो इनमें से कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी बाद में उसे हो सकता है। यहां पे भी वाह जब आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि ये पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, ये मतलब नहीं। जब वाह आ गया तो इसमें ऑर्डर जरूरी नहीं होता, फा में ऑर्डर जरूरी होता है कि इस ऑर्डर में आए हैं ये फिर ये फिर ये, इसलिए हम उसका तर्जमा फिर के साथ भी करते हैं ना। तो यहां पे ईसा अलैहि सलाम बाद में आए हैं लेकिन उनका जिक्र बीच में है। वह आतना दाऊदा जबूरा, और दी हमने दाऊद अलैहि सलाम को जबूर। और दाऊद अलैहि सलाम वो पैगंबर हैं कि जिनको ये बहुत मानते थे, दाऊद और सुलेमान अलैहि सलाम के बाद तो समझते थे कि कोई पैगंबर ही नहीं आया, बस वहीं पे नबुवत खत्म हो गई। और उनके पास भी तो जबूर आई थी, और जबूर कौन सी तख्तियों पे लिखी हुई थी, और वो जबूर के अंदर शरीयत नहीं थी, अल्लाह ताला की हम्द के तराने थे। और आपको पता है कि दाऊद अलैहि सलाम को इस कदर खूबसूरत आवाज दी गई थी कि जब वो जबूर पढ़ा करते थे तो परिंदे रुक जाते थे हवा में, पड़ाते थे उनके ये जो उनकी तिलावत होती थी उसको सुनते थे, पहाड़ उनके साथ तिलावत करते थे, उनके साथ पढ़ते थे। इमेजिन करें कितनी खूबसूरत आवाज होगी उनकी। वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका मियां कबलू, और कई रसूल ऐसे हैं जिनका हमने आप पर इससे पहले जिक्र किया। अलैका से मतलब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इससे पहले जिक्र किया, मतलब क्या? यानी कुराने पाक में उनका जिक्र मिलता है, हम पहले से आपको बता चुके हैं उनको। और आपको पता है कि कितने अंबिया का जिक्र है कुरान में? 25, बस कहते हैं 24, क्योंकि ज़िलकिफ़ल के ऊपर इख्तलाफ है उलमा का कि ज़िलकिफ़ल जो थे वो पैगंबर थे या नहीं थे, तो जो उनको काउंट करते हैं तो 25, अगर नहीं काउंट करते तो 24। तो सिर्फ 24 या 25 का जिक्र है कुरान पाक में, इनके अलावा क्या कोई पैगंबर नहीं आए? आए हैं। और एक जगह पे हमें रिवायत में मिलता है 1,24,000। वैसे वो उस हदीस के अंदर कलाम है, यानी पता नहीं है कि वो हदीस सही है या नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा नहीं है जिसमें ये 1,25,000 पैगंबरों की बात आई, मगर यानी बेशुमार पैगंबर आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वरुसुलन नक्सुसहुम अलैक, और कई रसूल हैं जिनका हमने आपके आगे जिक्र ही नहीं किया है। इनका जिक्र ज्यादातर आता है जिनको अरब लोग जानते थे या उनके इर्द गिर्द कभी करीब के इलाकों में वो पैगंबर आए थे, तो अव्वलीन मुखातिब जो फर्स्ट जिनके साथ बात की गई है वो तो अरब ही है ना, वो मक्का वाले हैं, तो उनके करीब करीब जो पैगंबर थे उन का ही जिक्र किया गया, बाकियों का नहीं जिक्र किया गया। अब आपका मतलब है अफ्रीका में, अमरीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कई पैगंबर आए होंगे लेकिन उनका जिक्र नहीं आपको मिलता, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे इनको छोड़ ही दिया गया? यूरोप में और रशिया में कौन आया हम कुछ नहीं जानते। बाज लोग कहते हैं बुद्धा जो था वो भी हो सकता है एक पैगंबर हो, तो हो सकता है, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि जो पैगंबर आए हैं उनका जिक्र नहीं है, अक्सर का जिक्र नहीं, ज्यादातर का जिक्र नहीं है, कम का जिक्र है। तो इससे हमें पता चलता है कि और भी जगहों पे आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक कि वहां पे अपने रसूल ना भेजते, जब तक कि उनको बता ना दे, उन तक हक वाजे ना कर दे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं इंसानियत को छोड़ दिया हुआ कि बाकी लोग जो हैं वो उनको तो कोई भी नहीं भेजा गया और सिर्फ यहाँ के लोग खास थे, ऐसा नहीं है, मगर हाँ उनका सबका जिक्र यहाँ पे नहीं आता। अच्छा, इसमें एक बड़ी ही खूबसूरत बात है, रुसुलन लम नकसुसुम अलैक, एक बहुत खूबसूरत बात है जो के सोचने की है। आखिर वो भी तो पैगंबर थे ना, पर उनका मेंशन ही नहीं हुआ। और आखिरी किताब जो कयामत तक बाकी रहने वाली किताब है उसमें उनका जिक्र ही नहीं आया, तो फिर क्या वो कोई चीज नहीं थे? क्या बात है, उनका जिक्र नहीं आया। अब देखे ना, हम तो जरा सा कोई काम करते हैं ना तो हमारा दिल करता है हमारा जिक्र हो, हमारा नाम मेंशन किया जाए, अनाउंसमेंट में हमारा बताया जाए, और अपना नाम सुन के इतने खुश होते हैं चाहे दूसरों को याद भी ना रहे, उनको परवाह भी नहीं है, उनको पता भी नहीं आप कौन है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है मेरा नाम वहां पे लिया गया था, स्टेज पे मेरा नाम लिया गया था और मेरे नाम के वहां पे बोर्ड लगे हुए थे। इन रसूलों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनका कोई नाम ही नहीं लिया गया? तो इससे पता चलता है एक बहुत, इसके अंदर से आप नुक्ता ये समझ सकते हैं, हमारे लिए सबके लिए सबक है कि बढ़ाई इसमें नहीं है, ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि जरूरी हो कि हमें कोई रिकग्नाइज ही करे, कोई हमारे नाम ही मेंशन किए जाएं तो फिर ही हम कोई बड़ी चीज होंगी। अगर हमारा नाम नहीं मेंशन किया गया हम तो रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमने आप काम ही नहीं करना, जी आप तो हमारा नाम भी नहीं लेते, चले ठीक है हमें कोई पे ना दें, लेकिन कम अज कम इंसान को ये तो होना चाहिए कि आप दूसरे को मेंशन तो करें। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती है ना, क्यों नहीं हमें हमारा जिक्र किया गया, हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया? इन पैगंबरों के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनकी कदर कीमत कम हो गई? नहीं, वो भी अल्लाह ताला के इसी तरह रसूल हैं जैसे बाकी हैं। कोई उनकी फजीलत में, उनकी कदरों मंजिलत में कोई कमी नहीं आ गई, अल्लाह ने नहीं मेंशन किया, जरूरत नहीं थी। हाँ, हमें अगर कह दिया जाए कि आप 10 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से 2 का नाम तो बताया जाएगा और बाकियों का नहीं बताया जाएगा, तो क्या होगा? अगली दफा हम काम ही नहीं करेंगे। बहुत सारे रसूल ऐसे हैं जिनका जिक्र ही नहीं मिलता, किसी को पता भी नहीं है कि उनके नाम भी क्या थे, कहानी तो दूर की बात है। ये होते हैं बड़े लोगों के काम, और जो छोटे लोग होते हैं ना वो बस नामों में ही पड़े रहते हैं, उनको यही जंग उनकी खत्म नहीं होती, मेरा नाम आया कि नहीं आया, आपने मेंशन किया या नहीं किया। तो हमें इससे ऊपर उठ के काम करने हैं, जब दीन का काम करना है ना तो इससे बालातर होके करें, इससे ऊपर उठ जाएं। जो बड़े काम करना चाहते हैं ना उनको फिर इस लेवल पे होना चाहिए, और जो छोटे छोटे में ही रहना चाहते हैं और छोटे ही रहेंगे तो वो फिर बस अपने नामों में ही रहे। तो नाम ना लेने में किसी की भी कदर और कीमत घटेगी नहीं अल्लाह की नजर में, ठीक है? अब जहां पे रसूल का लफ्ज आ जाता है ना उसमें नबी भी शामिल है, जहां पे नबी का लफ्ज आ गया उसमें रसूल भी शामिल है। हाँ, एक साथ दोनों आ गए तो फिर नबी और रसूल में फर्क है, और उलमा ने डिफरेंट, आप देखेंगे उलमा ने डिफरेंट डिफरेंट फर्क बताए हैं रसूल में और नबी में, ये फर्क है। अब यहां पे देखें, जहां पे नबी कहा गया मिन व नबी ये ना मिन बादी ही, तो इसके अंदर रसूल भी है शामिल। जब यहां पे कहा गया मिन कबलू व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन कबलू, तो उनमें रसूल भी है नबी भी शामिल है, क्योंकि जब एक का बताया जाएगा तो दूसरा उसमें खुद ब खुद आ जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन जिस वक्त साथ साथ आए, मसलन नबी और रसूल एक ही जगह पर दोनों साथ साथ मेंशन किए जा रहे हैं, तो उस वक्त फिर आपको समझना चाहिए कि रसूल और नबी में स्लाइटली सर डिफरेंस ये है। बाज कहते हैं कि आप, क्योंकि मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट उलमा ने डिफरेंट बातें कही हैं, बाज कहते हैं रसूल वो हैं जिनके शरीयत दी गई, नबी वो हैं जो पिछले की शरीयत लेके कंटिन्यू करते हैं, रसूल वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी महफूज रखा, उनको कोई कत्ल नहीं कर सकता, नबी वो हैं जिनको कत्ल भी किया गया, और भी बहुत सारी रसूल वो हैं जिन पे किताबें या सहीफे उतरे, नबी वो हैं जिनके ऊपर नई किताबें उतरी, तो और बहुत सारी बातें, मगर डिफरेंसेस हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं कि बस मुझे पता होना चाहिए नबी और रसूल कौन है, और क्योंकि आपको इतने सारे अकवाल इसमें मिलेंगे। बाज ने ये भी कहा, लेकिन ये इस बात में इतनी ज्यादा इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, बाज ने कहा नबी वो हैं जिनको आम लोगों को कहने का नहीं कहा गया कि आप आम लोगों में तबलीग करें, तो रसूल वो हैं जिनको हुक्म दिया गया कि आप जाएं और आप लोगों को ये कहें। लेकिन इसके अंदर इतनी ये समझ से बाहर है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नबी वो हैं कि जिनको नहीं कहा गया और रसूल वो हैं जिनको कहा गया कि आप जाएं और बताएं लोगों को, और नबी वो हैं कि अगर लोगों ने उनको नहीं माना तो उनके ऊपर अजाब नहीं आया, रसूल वो हैं जिनके ऊपर फिर अगर उनको नहीं माना गया तो उन कौमों के ऊपर अजाब आए, फिर अल्लाह ने उनको सफाए हस्ती से मिटा दी। तो ये इसमें टू मच इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस एज लॉन्ग एज आपको ये बात समझ आ गई है तो ठीक है। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और कलाम किया अल्लाह ताला ने मूसा से, कैसे? ऐसे नहीं कुछ जैसे कोई खुफिया कोई बात ऐसे कोई को लिख के की गई हो या किसी और तरीके से, नहीं, तकलीमा जैसे कलाम करना होता है, जैसे कलाम का एक तरीका होता है जैसे कलाम किया जाता है डायरेक्टली, यानी उनसे कलाम किया मे वराए हिजाब के, हिजाब के पीछे से, लेकिन लेकिन डायरेक्ट अल्लाह ताला ने उनसे बातचीत की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम के अलावा अल्लाह ताला ने, हमें पता नहीं चलता वल्लाहु आलम, मगर हमें ऐसे पता नहीं चलता कि किसी और के साथ भी अल्लाह ताला ने इस तरह से डायरेक्ट कलाम किया हो। हाँ, जमीन पे सिर्फ मूसा अलैहि सलाम के अलावा किसी और से नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसमानों पे किया था। लेकिन अब ये बताएं कि जब यहां पे कह दिया गया कि देखें नूह अलैहि सलाम पे भी और नबियों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने वही की, और बहुत सारे रसूल आए अल्लाह ने उनके ऊपर वही की, तो अब इसके बाद क्या किसी रसूल, मिसाल के तौर पे इस्माइल अलैहि सलाम, इसहाक अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम, उनके पास कोई तख्तियों के ऊपर लिखी हुई किताबें नहीं आई हैं, तो क्या इससे उनकी कोई शान घट गई? नहीं घटी। ये अल्लाह ताला का अपना तरीका है, किसी को अल्लाह ताला ने ऐसे वही दिल में डाल दिया बात, या फरिश्ता लेकर आया, जुबानी बातें की गई, कहीं के ऊपर तख्तियों की सूरत में कर दी गई। तो इसके अंदर इतना बड़ा इसको इशू बना लेना कि हमें ऐसा ही चाहिए, ये तो उनका मुतालबा सही नहीं था। रुसुलम मुबशरीन व मुनजरीन, रसूल तो इसलिए आए हैं, कोई अपने मौजे दिखाने का उनका मकसद नहीं होता कि हम आए और कुछ सुपरफिशियल चीजें करके दिखाएं लोगों को, कोई करतब दिखाएं और उनको मुतासिर करें। वो तो इसलिए आते हैं कि लोगों को बशारतें दें और उनको इंतजार करें, मतलब क्या है, खुशखबरियां सुनाएं और उनको डरावे दें, वॉर्न करें। मुंजिर का मतलब हम वैसे डराने वाले तो लिखते हैं, लेकिन डराने वाला वो डराने वाला मतलब नहीं है कि जिससे खौफजदा किया जाए लोगों को। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आजकल ऐसी कोई शक्लें ये हालोवीन पे बना लेते हैं जो डराने वाली होती, ये बात नहीं है, बल्कि मतलब वॉर्न करना कि देखो अगर तुम इस रास्ते के ऊपर चलते रहे जो शिर्क का रास्ता है, तो इसका अंजाम ये है, ये डरावा, इसके आगे जहन्नुम है, ये डरावा। तो मुबशीरीन भी थे वो, मुंजरीन भी थे। और देखिए कुरान पाक का भी असलूब यही है, कुरान पाक में भी आपको खुशखबरियां भी मिलती हैं और डरावे भी मिलते हैं। बाज लोगों को खुशखबरियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जहां डराने वाली बात आती है कहते हैं हाँ ये कुरान में ऐसी क्यों बात है, हम तो डर जाते हैं, ये तो बातें होनी ही नहीं चाहिए। तो ये चीज सही नहीं है, इंसान को दोनों चीजों की जरूरत होती है, उसको खुशखबरी भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, उम्मीद भी चाहिए, और उसको एक जिसको कहते हैं कि एक खबरदार करना, एक वार्निंग भी चाहिए होती है। सिर्फ अगर आप खुशखबरियां ही देते रहते हैं तो वो भी काम नहीं करती, और अगर सिर्फ डराते रहे तो वो भी इंसान को नाउम्मीद कर देते हैं। आप अपने बच्चों के साथ भी तो ऐसा करते हैं, कभी तो उनको कहते हैं कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी, तुम्हारी गेम ले लूंगी तुम्हारे साथ ये, और कभी उनके साथ आप ये भी कहते हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आज मैं तुम्हें ये गिफ्ट दिलाऊंगी मसलन। तो दोनों चीजें करते हैं ना, और यही दोनों चीजें तरबियत के लिए जरूरी होती हैं, कि आप बशारत भी दें आप डरावा भी दें, एक ही चीज करना इनमें से जो है ना, कभी कभी सिर्फ खुशखबरियां देना भी लोगों के लिए इस कदर तबाहकुन हो जाता है, क्योंकि वो इतनी खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हम बस पार ही पार हैं, अब तो कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं, अब हम जो मर्जी करेंगे वो हमारे लिए तो जन्नत ही है, ये खुशखबरियां पा पा के वो ये इस हालत पे पहुंच जाते हैं। तो नबियों ने खुशखबरियां किनके लिए दी? जो मान जाएगा और साले अमल करेगा, ऐसे ही नहीं कि सारों को खुशखबरियां हैं तुम सभी सही हो। और मुनजिर वो किसके लिए थे? वो लोग जो कुफर करने वाले, शिर्क करने वाले या गुनाहों में पड़े हुए। ये किस लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा था? ली अल्लाह, ताकि ना यकू ना हो, लिन्नास लिए लोगों के, अल्लाह अल्लाह पर हुज्जतन हुज्जत, बादर रसूल रसूलों के बाद, कि लोगों के पास अब कोई एक्सक्यूज ना रहे रसूलों के आने के बाद। क्या मतलब है? कयामत के दिन कोई लोग खड़े होके ये ना कहें या अल्लाह आपने हमारे पास कोई रसूल भेजा होता तो हमें पता होता ना, अल्लाह तो किसी को भेज ही देता जो आके हमें बता देता, हमें क्या पता था क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह हम तो अपनी सोच के मुताबिक चलते रहे, जैसे सबका रहते वैसे करते रहे, हमें कहाँ पता था अल्लाह कोई रसूल ही भेज देता। तो लोग फिर अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम डाल देते क्यामत के दिन। अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, सब एक्सक्यूजेस खत्म कर दिए रसूलों को भेज के, समझ आई बात? लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं हमारे मुसलमानों में कैसे लोग हैं, बड़े ही भोले लोग हैं ये भी, जो आगे से क्या कहते हैं आज। हम तो इसलिए नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं इल्म लेते कि फिर अमल करना पड़ेगा। तो हम अमल नहीं करेंगे तो हम अल्लाह को जाके कह देंगे कयामत के दिन कि अल्लाह हमें पता ही नहीं था, तो फिर हम अमल कैसे करते। अल्लाह ताला ने तो पूरी इंसानियत के लिए हुज्जत तमाम कर दी है, तुम तो मुसलमान हो के कैसे कह सकते हो जो एक रसूल का कलमा पढ़ते हो, फिर तुम कैसे कयामत के दिन खड़े होके कहोगे अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। अल्लाह हमें पता क्या था, हमें पता होता तो हम अमल करते ना, तुम कैसे एक्सक्यूज देगे ये बताओ। क्योंकि ये बात मैंने इतने लोगों से सुनी है कि उनके पास बड़ा अच्छा घड़ा घड़ाया बहाना है जो उन्होंने अभी से सोच लिया हुआ कि वो अल्लाह ताला को क्या कहेंगे। देखो बनते कितने स्मार्ट है, इतने स्मार्ट बनते हो, तुम्हारी बातें अल्लाह नहीं सुन रहा, कोई खुदा खौफ ही नहीं है, वो सुन रहा है कि तुम ये, जैसे को कह दे कि भाई मैं तो, वो जज आपके सामने बैठा और आपका है, मैं तो जज के सामने जाके अदालत में कह दूंगी कि मैं तो बरी हूँ जिम्मा हूँ और ये अभी मैं चोरी कर रही हूँ, भाई मैं तो जज को कह दूंगी और जज आपके सामने ही बैठा। आप जिस अल्लाह के सामने खड़े होके ये बहाने करने का सोचते हैं, देख नहीं रहे, सोचते नहीं है कि वो अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आप उसकी नजरों में, वो आपके सारे बहाने सुन रहा है। हम तो इसलिए नहीं सीखते, फिर अमल करना पड़ेगा। अमल तो हमने करना नहीं, हम तो अमल से बड़ा डरते हैं, वो नहीं हमसे होता तो हम अल्लाह को कह दे हमें पता ही नहीं था, व्हाट अ ट्रिक। हाँ यानी जैसे लोगों को बहाने करके हम इस तरह कर देते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं था, लोग मुझे तो पता ही नहीं था रेड सिग्नल पे रुकना है, लोग मुझे पता ही नहीं था ये करना है, हमें क्या पता था। तो इसी तरह लोग हमारी बातों में आ जाते हैं ना, तो इसी तरह हम नाउजु बिल्ला अल्लाह को भी अपनी बातों में ले आएंगे। ये सोचते हो तुम क्या अल्लाह के सामने बहाना करोगे। तुम्हारे पास अल्लाह ने अपना रसूल भेज दिया, खास तौर पे मुसलमानों सुन लो, तुम तो अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम गवाही देते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तुम बताओ तुम क्या जाके हुज्जत दोगे अल्लाह के पास, तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज होगा। चलो दूसरे मिसाल के तौर पे कोई कह देता है हमें तो पता ही नहीं था, उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसलिए रसूल भेजे हैं ताकि कोई ना उस दिन खड़ा हो के ये कहे अल्लाह को हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे। एक्सक्यूज खत्म हो गया, ये हम तो जानते नहीं, तुम्हारे पास भेजे थे अल्लाह ने रसूल, हर बस्ती के पास रसूल है। और देखें अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशीर और नजीर बना के भेजा, कुरान पाक में है कि हमने आपको बशीर और नजीर बना के भेजा। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सबके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, हाँ सबके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए रसूल बना के भेज दिया, यानी आपकी जो तालीमात है और आप जो वही का ये पैगाम लेकर आए, ये कयामत तक के लिए महफूज है, सेफ है, इसलिए आपकी रिसालत कयामत तक के लिए हो गई। अगर नाउजु बिल्ला ये महफूज ना होता, अगर ये किसी ने चेंज कर दिया होता जैसे बाकी किताबें हो गई, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही महफूज ना होती तो फिर कोई कह सकता था कि हमारे पास कौन आया। अब आपके पास फिजिकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंची, लेकिन क्या आपको पैगाम पहुंच गया? जी हाँ पहुंच गया, पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं। हाँ कोई हो सकता है मे बी हमें जिसका ना पता हो, कोई कह सकता है नहीं जी हमें तो नहीं पहुंचा, कोई किसी जंगल के अंदर रहता है, कोई किसी आइलैंड में रहता है, वाकई वहां तक नहीं कोई पहुंचा है। एक जगह का बता रहे थे कि एक आइलैंड में अभी तक लोग ऐसे रह रहे हैं, वो ये कपड़ा बांधा हुआ है और वो कुछ इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं कि उन्होंने उनको सैटेलाइट से देखा, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं, कोई गया ही नहीं आज तक, और वो ऐसे लोग हैं यार। सुभान अल्लाह, आप देखें ये बात आप लोगों ने भी न्यूज में सुनी होगी, कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ इस बात को, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, ये गए कि हम इनको जाके प्रीच करते हैं, तो अभी बोट्स में जा ही रहे थे तो उन्होंने इतना वहां से ही मारा, तीर चलाए, वो किया, उनको खत्म ही कर दे, उनको सारों ने वैसे ही छोड़ा हुआ है, शायद वो जगह इतनी इस काबिल ही नहीं होगी, वरना तो दूसरे लोग जाके कब्जा कर लेते, वहां पे कोई रिसोर्सेज ऐसे नहीं होंगे, तो वो जैसे रह रहे हैं, जैसे पता नहीं किस जमाने के, जिस तरह से वो रह रहे हैं वो वहीं रह रहे हैं, ना उनको कोई छोड़ छेड़ता है और ना कोई वहां पे जाता है, कोई, हो सकता है ऐसी जगह कोई आज में कोई भी पैगाम नहीं पहुंचा, कोई भी उनके पास कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं है, तो हाँ अल्लाह ताला के पास जाके जब वो ये कहें तो अल्लाह ताला वहां पे अपने अदलो इंसाफ के मुताबिक, जिस तरह से भी अदल के मुताबिक होगा, उस तरह उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उनका क्या होगा, हम ना जज बने ना। हाँ मगर मेजॉरिटी दुनिया, 99% इस वक्त दुनिया सारी जानती है, नाम तो जानती है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आगे फिर हम पढ़ेंगे उस हदीस को, कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से किसी के कान में भी मेरी आमद की खबर पड़ गई, ठीक है, मेरी आमद की खबर पड़ गई और वो ईमान नहीं लेकर आया मुझ पे, मौत से पहले उसी चीज पे ईमान नहीं लेकर आया जो मैं लेके आया हूं, तो वो जहन्नुम में जाएगा। समझ आई? और उम्मत से मुराद कौन है? कि मेरी उम्मत में से जिसके कान में मेरी आमद की खबर पड़ गई। उम्मत का मतलब कौन है? उम्मत मतलब उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जितने भी इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए ना, वो सब आपकी उम्मत है, सब उम्मत है। हाँ मगर क्या ये काफिर भी उम्मत है? हाँ ये भी उम्मत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर ये कौन सी उम्मत है? उम्मत दो तरह की है, एक उम्मत इजाबत और दूसरी उम्मत दावत। ये फर्क समझ लें। एक उम्मत इजाबत कौन है? जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर और इस्लाम कबूल कर लिया। और दूसरी कौन सी उम्मत है? उम्मत दावत। ये बाकी जितने भी हैं जो मुसलमान नहीं है, वो उम्मत दावत है आपकी, उनके तक दावत पहुंचनी है, उन तक भी आपकी दावत है, उन तक भी आपका पैगाम है। तो इसको समझें कि ये सारी उम्मत ही है। तो जिसके कान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर पहुंच गई, जिसको पता चल गया कि एक रसूल आए थे, फिर उसके बाद उसने परवाह ही नहीं की। परवाह क्यों नहीं करते लोग? इसलिए कि अपने दे डोंट केयर, कुछ अपनी आखरत, कुछ अपनी दुनिया से में इतनी इस कदर ज्यादा मशगूलियत, ये असबाब है कि इंसान को कोई परवाह ही नहीं है कि वो ये जानने की भी कोशिश करे कि हाँ कोई पैगाम लेकर आया था, कोई रसूल था। तो अल्लाह ताला ने एक्सक्यूज खत्म कर दिया। सुन लो लोगो, अगर किसी ने कोई अभी तक बहाने बना के रखे हुए थे ना, तो अब आप अपने बहानों को एक साइड पे कर दे। ये अब रसूल आ गए, अब किसी का बहाना नहीं कोई चलना। अब कोई आप में से ये नहीं कह सकता मैं क्या करती मुझे तो पता ही नहीं था, मैं क्या करती मैं तो घर में बड़ी मसरूफ रहती थी, मैं क्या करती मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं थी, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती थी, मैं को कुछ सीख ही नहीं सकती थी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं सकती थी। आज का इंसान कम अज कम ये नहीं कह सकता। हाँ शायद पुराने जमानों के अंदर जब कुछ भी वसाइल नहीं थे और कोई सहराओं में शायद कोई एक बंदा अपनी झोंपड़ी में रह के ही जिंदगी गुजार के वहीं पे मर खप गया, हो सकता है वो कोई एक्सक्यूज दे सके। आज का इंसान कहाँ से एक्सक्यूज देगा? जिसके पास हर तरह का कम्युनिकेशन का जरिया है, वो कैसे कह सकता है कि मैं मुझे पता ही नहीं था? यानी एक दिन उसको कयामत के दिन ही आंख खुली है, ओहो अब मुझे पता चला है। ये अब आपको पता चल गया, अब आगे इल्म लेना आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको पता चल गया एक रसूल आया है अल्लाह का पैगाम लेकर, तो उस पैगाम को जानना आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ के उस पैगाम को जानें, उसको समझें, फिक्र करें इस चीज की कि उसमें क्या है। ये नहीं कि बेपरवाह होकर बैठ जाए, क्योंकि आप हुज्जत नहीं दे सकते अल्लाह के सामने। कोई भी हुज्जत तमाम हो गई जब अल्लाह ने रसूल भेजी, आप अल्लाह ताला को ये इल्जाम नहीं दे सकते नाउज़ुबिल्लाह उस दिन खड़े होके कि अल्लाह ताला तूने बताया होता तो हम भी नेक बन जाते ना, हमें कहाँ पता था, मुझे तो पता ही नहीं था ये गुनाह है, मुझे तो पता ही नहीं था जन्नत का रास्ता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था क्या काम करने हैं, हिदायत कौन किस किस चीज में है, मैं क्या जानती, कौन कह सकता है ये बताएं। और आज देखें ये फ्री क्लासेस हैं आपके पास, इंटरनेट हर एक के पास मौजूद है, लेकिन इंटरनेट अगर हर चीज के लिए और इस्तेमाल हो लेकिन कुरान को समझने के लिए ना हो, तो क्या एक्सक्यूज देंगे आप? आपके पास पैसे नहीं है देने को, लेकिन ये फ्री क्लास है, जीरो जीरो फीस, कोई ये कह सकता है कि मैं क्या करती, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। वो तो इल्म ही उस वक्त बड़ा महंगा था, तो इतने पैसे डिमांड करते थे, मैं कहां से सीखती। क्या एक्सक्यूज देंगे, हम में से कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। अच्छा, मेरे लिए चल के जाना कहीं मुश्किल था, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। अब तो आपके घर के अंदर, बताइए मैं और आप क्या बहाने देंगे अल्लाह के सामने, या हमने क्या किया रसूल के पैगाम के साथ, हम क्या कुछ कह सकेंगे। इसीलिए तो जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा ना, इंसान के पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा। अगर पूछ लिया गया ना क्यों किया ये, है ना, दुआ अल्लाह हसीबना हिसाब यसीरा, इसीलिए दुआ अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर देना, अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर देना। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया क्यों किया तुमने ये, वॉट इज योर आंसर गोइंग टू बी, क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे। दुनिया में तो बड़े आराम से मुकर जाते ना, मुझे पता ही नहीं था, आई डिडंट नो दैट, वहां पे क्या कहोगे। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत इज्जत वाला, बहुत हिकमत वाला है। इसमें भी उसकी हिकमत है, उसने रसूल भेजे, वो बड़ा गलबे वाला है, बड़ा कहर वाला है, उसने हुज्जत तमाम कर दी है। सूरह तौहा में आयत 134 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर हम इन्हें इससे कबल अजाब से हलाक कर देते तो वो ये कह सकते थे, हमारे रब तूने हमारे पास रसूल क्यों ना भेजा कि हम जलीलो ख्वार होने से पहले ही तेरी आयात की इत्तिबा कर लेते। यानी अगर अल्लाह ना रसूल भेजता और उसे पहले ही उनको अजाब में हलाक कर देता, तो इन्हें आके तो कहना था, इंसान तो बड़ा ही बहाने बनाने में तो बड़ा तेज है ना, जब उसकी गर्दन पकड़ी जाती है तो फिर कितने बहाने करता है, नहीं जी ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, ये नहीं। हम छोटी सी चीज पे हमें कोई पकड़ ले, फिर देखें बहानों की लिस्ट कितनी होती है। तो फिर अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह का इल्म इतना वसी है ना, अल्लाह को ये भी पता है जो चीज हो चुकी है, और उसको ये भी पता है जो नहीं हुई। तो अगर ये हो जाती तो फिर क्या होता, ये भी अल्लाह ताला को इल्म है। अगर अल्लाह ऐसा कर देता तो तब इन्होंने ये कहना था, अल्लाह क्यों नहीं भेजे तूने, यानी कसूर तो तेरा ही है, अल्लाह ताला माफ करे, हमारा तो कसूर नहीं, हम तो बड़े इनोसेंट थे। तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा की, कि वो ये जिम्मेदारी नहीं कि उनको मुसलमान कर दें, मगर ये जिम्मेदारी जरूर है कि उन तक पैगाम पहुंचा दें, पैगाम उनको दे दें, ताकि वो ये ना कह सके हमें पता ही नहीं था। वरना वो ये कहेंगे, अल्लाह इनको पता था, इन्होंने नहीं हमें बताया, ये हमारे हमसाए में रहते थे, ये हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे कुलीग्स थे, हमारे ये थे, इन्होंने नहीं हमें बताया। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ल इलैक, ये माने या ना माने डजंट मैटर, अल्लाह इस पे गवाह है जो उसने नाजिल किया आपकी तरफ। समझ आई बात, अल्लाह तो खुद गवाह है कि उसने ये नाजिल किया, अनजला वो भी इल्म ही, उसने नाजिल किया साथ अपने इल्म के इस कुरान को। ये नहीं मानते थे ना इसको कि मैं, हमने नहीं ये मानना, ये तो आप आके बताने बोलना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं इस कुरान को, बोल के बता रहे होते हैं, हमें हमने देखा तो नहीं है ना आते हुए, हमारे सामने तो नहीं आया कोई इस तरह की चीज हो, कोई स्टोन्स पे लिखा हो, तख्तियों पे लिखा हो, कोई ऐसी पत्थर की सिलों पे लिखा हो, कोई इस चीज पे लिखा हो, तो हम देखें तो हमें पता भी चल जाए कि भाई अल्लाह की तरफ से। वो तो आप बोलना शुरू करते थे, हम कैसे यकीन करें अल्लाह की तरफ से है या नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह जब गवाह है कि उसने नाजिल किया है आपकी तरफ अपने इल्म के साथ, यानी ये कुरान किसके इल्म से नाजिल हुआ, अल्लाह ताला के, येट हमारे लिए इस कुरान की सिग्निफिकेंस क्या है। तमाम उलूम बाकी जो हैं आप देखें, वो इंसानों के बनाए हुए, कोई साइंस है, कोई कोई ठीक है, अल्लाह ने उतारे हैं वो इल्म, इंसान को सिखाए हैं, लेकिन ये इल्म वो है जो कि अल्लाह ताला ने, यानी ये कुरान वो है जो अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ उतारा, और अल्लाह ताला का इल्म कितना है। फिर भी हम इस कुरान को पीछे कर देते हैं और बाकी चीजों को आगे रखते हैं। इस कुरान की फिर वैल्यू क्या है? किसी इंसान की राय, किसी का मशवरा, किसी की बात हमें ज्यादा अपील करती है बजाय जो कुरान के अंदर लिखा होता। हालांकि अगर हमें ये यकीन आए कि अल्लाह ने अपने इल्म के साथ इसको नाजिल किया है, तो अल्लाह ताला का इल्म तो बहुत बड़ी बात है कि मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम, कि वो जब खिजर अलैहिस्सलाम ने उनको क्या बताया था, खिजर अलैहिस्सलाम का भी इल्म इतना था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से भी ज्यादा था। मूसा अलैहिस्सलाम तो ये समझ रहे थे कि मेरा इल्म बहुत ज्यादा है, खिजर अलैहिस्सलाम का उनसे भी ज्यादा था। जब भी तो उनको नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे एक्शन कर रहे हैं। तो खिजर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि ये जो कश्ती की डेक पे जो आके चिड़िया बैठी है, इसकी चोंच में जो पानी का कतरा है, ये है इल्म मेरा आपका और सारी दुनिया का इल्म ये है, और अल्लाह ताला का इल्म ये है जैसे ये समंदर है। उन्होंने एक यानी एक मिसाल के साथ बताया अल्लाह के इल्म की, तो उसका तो इल्म लामहदूद है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है, मगर एक समझाने के लिए कि ये है फर्क को, समझो इस बात को कि तुम्हारा इल्म है क्या, और उस कायनात के रब का इल्म तुम्हारे मुकाबले में कितना है, और उसने उस इल्म से इस कुरान को नाजिल किया है। इसके बाद तुम्हें तो भाग भाग के इस कुरान की तरफ आना चाहिए, ये सबसे इल्म वाले का कलाम है, इसमें कुछ चीज नहीं गलत हो सकती, दुनिया जहान की बातें गलत हो सकती हैं, ये जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। भाग भाग के आओ इसकी तरफ, भाग भाग के मशवरा लेना है तो इससे लो, भाग भाग के देखो कि जिंदगी में चलना है तो इसकी तरफ आके इससे सीखो, रहनुमाई चाहते हो तो इसके से लो। क्यों? इसलिए कि ये उसकी तरफ से है जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है, आलीम है, जिसका तो एक नाम ही आलीम है। वल मलाइका तो यशहदून, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। क्या गवाही देते हैं? कि अल्लाह की तरफ से यह नाजिल हुआ है। वकफा बिल्लाही शहीद, और अल्लाह काफी है गवाह, अल्लाह की गवाही के बाद किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। अगर नहीं ये मानते ना माने, अल्लाह ताला को ये गवाह इस पे है और अल्लाह की गवाही काफी है। काफी होने का मतलब क्या है? यानी देखें, एक गवाही हम तो नहीं देख रहे ना कि अल्लाह ताला गवाही दे रहा है। हम क्या कैसे सोच समझे कि अल्लाह की गवाही काफी है, अल्लाह ने गवाही दी है। अल्लाह की गवाही का मतलब यहाँ पे ये है, इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आगे भी हम जा सकते हैं लेकिन समझना जरूरी है। अल्लाह की गवाही का मतलब ये है कि कुराने पाक के खिलाफ जितने भी लोग बातें बनाए, एतराजात करें, चाहे पास्ट में किसी ने किए थे, चाहे आज लोग कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर में लोग करेंगे, तो उनके लिए किसी आउटसाइड दलील की जरूरत नहीं है आपको, अल्लाह की गवाही उसमें काफी है। क्या मतलब हुआ अल्लाह की गवाही का? यानी अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया कि अल्लाह ताला इस पे गवाह है, अल्लाह की तरफ से जो ये बात आई है कुरान हक है, उसमें आपको मुसलमानों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम जाएं, हाय हम वो कि किस तरह से हम इनको कन्विंस कर रहे हैं, कैसे हम इनको ये करें, ये तो मान नहीं रहे। नहीं, अल्लाह ताला ने खुद गवाही दे दी है ना, वो ही काफी है। क्या मतलब? कि अल्लाह ताला ने कुरान की हक्कानियत साबित कर दी है इस कुरान में ही, ये है अल्लाह की गवाही, इस कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसी में है। क्योंकि अल्लाह ताला की गवाही आप जाके तो नहीं देख सकते कहीं से, कहां से देखेंगे? यानी इस कुरान में ही गवाही है, इसलिए कोई नहीं मानता या इतराजात करता है ना, तो आप इतने एग्जॉस्ट ना हो, आप कहें कुरान पढ़ लो, इसमें उनके इतराजात का जवाब है, अल्लाह ने खुद दिया हुआ है। उनके जो डाउट्स हैं उनकी अजाला अल्लाह ने खुद कर दी है, ये खुद उनको रहनुमाई देगा। और वाकई कोई इंसान अगर खुले जहन के साथ इसको पढ़ेगा ना, ये सब
सवालों के जवाब दे देता है उनके, जो उनके तराजात, जो उनके डाउट्स, ये कहीं से सीख के आए, किसी ने उनको सिखा दिया, ये कहीं से बना के ले आए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, ये किसी और का नहीं है, किसी और डिवाइन हस्ती का कलाम नहीं है, ये जितने भी एतराजात हैं उनके लिए अल्लाह काफी गवाह है कि ये हक है। और वो गवाही कहाँ से मिलेगी, हम किधर ढूंढने के लिए जाएं उस गवाही को? आपके दुनिया में तो होता है ना कि इंसान सामने आपके खड़ा होता है, वो आके गवाही देता है तो आपको समझ आ जाती है। अल्लाह की गवाही आप कहाँ से जाके ढूंढेंगे? कुरान से। यहां पे अल्लाह ने गवाही दी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे उनको? कुरान को पढ़ लो, इसमें तुम्हारी बातों का जवाब है सारे तराजात का। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, जो मैं इसलिए दोबारा भी दोहराई है। अब कोई आपसे पूछे अल्लाह की गवाही कैसे, किस किस तरह अल्लाह की गवाही, तो फिर आपको ये बातें समझनी होंगी। कोई तराज करे कुरान के ऊपर तो उसको कुरान ही थमा दे, ये लो खुद जाके देख लो, अल्लाह खुद इसमें गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला ने खुद इसके अंदर बता दिया सब। इन्नल्लदीन कफर वसद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक जिन्होंने कुफर किया, यानी अभी कुरान आ गया फिर भी कोई लोग कुफर करते हैं, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और खुद भी नहीं मानते, दूसरों को भी रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। कद दल्लू दलालम बाईदा, वो लोग बहुत खुली गुमराही, दूर की गुमराही के अंदर भटक रहे हैं। यानी क्या मतलब हुआ? देखें, एक इंसान ना 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 करता ही जाए ना किसी चीज को, तो उसके लिए फिर मानना बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन वो उसकी अपनी ना ही उसके लिए अना का मसला बन जाती है कि अब मैं मानूं कैसे। एक इंसान जब खुद भी गलत कर रहा है और लोगों को भी रोक रहा है, वो यानी इतना एफिशिएंट है कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाया हुआ है कि मैं बस लोगों को इस रास्ते पे नहीं आने देना। आपने वो देखा सद्दू, सद्दू को अगर आपने समझना है ना, ये जो फुटबॉल खेलते हैं, तो आपने गोलकीपर देखा, गोलकीपर की सारी जिम्मेदारी क्या होती है कि गोल हो ना जाए, बॉल इस गोल में दाखिल ना हो जाए, ऐसे ही है ना। कुछ लोगों के भी जिंदगी का यही मकसद होता है, वो उस गोलकीपर की तरह बस आगे ऐसे आड़ बन के, हिजाब बन के खड़े हो जाते हैं कि कोई इस इस्लाम में दाखिल ना हो जाए, और अगर कोई कोशिश भी करे तो फिर भी हम आगे इसके ऐसे बंद बांध के खड़े हो जाएं कि इसको जाने ना दे। और आज आप सोशल मीडिया पे देख लें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो गैर मुस्लिमों को तो नहीं आने देते इस वक्त, जो मुसलमान हैं उनको भी भटका रहे हैं कि किसी तरह ये भी इस रास्ते पे ना चल सके, ये भी गुमराह हो जाए। और ऐसे वाकयात हैं, और आपने भी सुने होंगे, वो हदीस बिल्कुल सच हो जाती है कि उस वक्त ऐसा होगा, इतने फितने होंगे कि कोई इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। इंटरनेट के आगे बैठ गए, बैठे थे तो मोमिन थे, उठे तो काफिर हो गए थे, इतने शकुक व शुबात दिल में आ गए इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में, ईमान तो चला ही गया। ऐसे लोग बैठे हैं अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, तो फिर वो खुद कहाँ से हिदायत पे आएंगे? दल्लू दलालम बाईदा, जिन्होंने अपना ये एजेंडा बना लिया हो, तो फिर वो दूर की गुमराही में, यानी दूर, इतने दूर जा चुके हैं ना, अब उनका आना बहुत मुश्किल है ना। और इंसान दूसरों को रोकता है ना, जब खुद तो रुकता है, जब दूसरों को रोकता है तो खुद भी बहुत दूर निकल जाता है। इन्नल्लदीना कफरू वज़लमू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुल्म किया, कुफर भी करते हैं वो लोग और जुल्म भी करते हैं। जुल्म का एक माना तो ये है कि गुनाह करना, लेकिन गुनाह भी जुल्म है ना, उसमें इंसान किस पे जुल्म कर रहा होता है? अपने आप पे, अपने आप के साथ जुल्म है गुनाह करना, किसी और को नहीं। आप सोचते दूसरे का कुछ बिगाड़ रहे होंगे, दूसरे का नहीं बिगड़ता, अपना बिगड़ रहा होता अगर इंसान को नजर आ जाए तो। वो तो कयामत के दिन नजर आएगा ना कि मेरा अपना आप कितना कुछ बिगड़ गया इन गुनाहों की वजह से। तो वो लोग जो कुफर भी करते हैं और जुल्म भी करते हैं, देखें कई कुफर कर रहे हैं लेकिन वो आप कहते हैं नहीं ये कुफर तो करते हैं, लेकिन हैं बहुत नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग। एक है कुफर भी करते हैं और जुल्म भी कर रहे हैं, गुनाहों में ऐसे पड़े हुए हैं, और फिर बाज तो ऐसे हैं जो लोगों को ऐसे रोकते हैं कि जुल्म के साथ। देखिए, एक है खुद रुकना, एक है दूसरे को रोकना, और एक है जुल्म करना। जुल्म क्या होता है कि किसी को उसका हक ना देना, कोई चीज है उसको उसके हक से महरूम कर देना, ये जुल्म होता है। तो ये तीसरी चीज है, ये सब एक चीजें नहीं है। खुद रुकना, दूसरों को रोकना, और हक ना देना किसी को उसका। अब सबका ये सबको ये आजादी है कि वो एक अल्लाह ताला की इबादत करें, सब इंसानियत को। लेकिन कुछ लोग इसमें भी हायल हो जाते हैं और सिर्फ रोकते नहीं है, जुल्म तक उतर आते हैं। आज देखें आप, जैसे चाइना में मुसलमानों के साथ, यूगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है कि उनको बाकायदा इस्लाम से हटाने के लिए किस किस तरह की टॉर्चर्स किए जाते हैं। 1 मिलियन से, यानी 10 लाख से ऊपर मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं, 10 लाख से ऊपर। इतने लोगों को उन्होंने वहां पे बंद किया हुआ है, और क्या कहते हैं कि हम इनको ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाएंगे। और असल में क्या है, उनको टॉर्चर कर करके इस्लाम से दूर किया जा रहा है। वो कोई भी इस्लामी शार में से कोई चीज को भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इवन सलाम तक नहीं कर सकते, इतना बीना इनके अंदर रहे। और जुल्म और बर्बरियत की जो इंतहा है, अगर उन स्टोरीज को पढ़ा जाए तो इंसान सो नहीं सकता रात। कैसे उनको पोर्क खिलाया जा, और पोर्क वहां पे बाकायदा उसकी उसके फार्म्स, ये पिक्स के फार्म्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये लोग खाएं, इनको खिलाया जाए। और एक उन्होंने बताई थी ये बात कि जो बड़ा उन्होंने ये फार्म बनाया, और उसका पहला दिन कौन सा रखा, जो फर्स्ट रमजान था। यानी बाकायदा प्लानिंग के साथ मुसलमानों को उनके दीन से हटाना। दूसरों को क्या, दूसरे ने तो क्या ईमान कबूल करना है, वो तो इनका हाल देख के भाग जाएगा कि ये अगर मुसलमानों का हाल है तो मैं कहां से इस इस्लाम को कबूल करूं। मुसलमान भी मुसलमान ना रहे, इतना जुल्म करना। और इससे पहले अगर आप लोगों को ये कोई किसी को हिस्ट्री में दिलचस्पी हो तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं जो सर्बों ने बॉस्नियंस के साथ किया था, कैसे उनके वो जेनोसाइड जो हुआ था, दुनिया ने वो मंजर देखे थे कि क्या हालात उन्होंने किए थे वहां पे, जुल्म की इंतहा कर दी कि अगर आप वो भी पढ़ें तो आप सोचते हैं कि इंसान वाकई जब गिरता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो असफलु साफिलीन हो जाता है। असफलु साफिलीन, नीचों से भी नीचा, के कोई जानवर भी वो जुल्म नहीं करता जो इंसान करता है जब वो शैतान बन जाता है। वो शैतान भी शर्मा जाए ऐसे इंसानों से जो जो उन्होंने जुल्म किया। मैं आपको यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मगर इसके ऊपर आया था पूरा आर्टिकल के, आप वो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं क्या क्या हुआ था। पूरा आर्टिकल आया था कि 20 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन हम इसको भूल नहीं सकते, फॉरगेट नहीं कर सकते और फॉरगिव नहीं कर सकते कि जो इन सरबों ने किया था। और सिर्फ किस लिए कि तुम मुसलमान हो, हालांकि वहां के मुसलमान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हम तो इनके साथ ब्लेंड इन हो जाएंगे, तो पता नहीं जो मुसलमान ये गलती करते हैं, ये सोचने की ना कि हम तो इनका साथ देंगे, इनके साथ इनके जैसे लगने लगेंगे तो पता नहीं ये हमें अपना लेंगे। नहीं, उनकी नजर में आप फिर भी मुसलमान होते हैं। आप चाहे खुद को मुसलमान जाहिर करें ना करें, आप माने ना माने, आप इस इस्लाम से चाहे जान छुड़ाना चाहते हैं और बस एक नाम के मुसलमान है, बाकी सब कुछ उनके जैसा कर लें, वो फिर भी आपको पहचानते हैं तो पकड़ पकड़ के मारते उस वक्त हैं, कहते हैं तुम मुसलमान तो हो ना, वो मुसलमान क्या कहीं मारते हैं। फिर भी कैसे औरतों के साथ सलूक हुए, कैसे उन लोगों को भूखा रखा गया ऐसे कि भूख के साथ वो मर गए, कैसे उनकी मैस ग्रेव्स मिली, कैसे 4 साल की बच्ची खड़ी हुई रो रही है और उसकी टांगों में खून जा रहा है। यानी मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती कि जो आप पूरा डिटेल में तो पढ़ ही नहीं सकते, आप सिर्फ पॉइंट्स भी पढ़े ना तो इंसान लरज जाता है कि इन्होंने ये हाल किया। तो ऐसों का फिर अंजाम क्या होना चाहिए जो कुफर भी करें और जुल्म भी करें। लम यकुन अल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह नहीं उनको माफ करेगा। वो इसी में अगर मर जाते हैं, तौबा नहीं करते, अल्लाह उनको नहीं माफ करेगा। वला लियहदियहुम तरीका, और ना ही उनको हिदायत देगा रास्ते की। इल्ला तरीका जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह उनको हिदायत तो नहीं देगा, हाँ ये हिदायत का रास्ता तो नहीं दिखाएगा, हाँ एक रास्ते का जरूर उनको रहनुमाई करेगा, वो है जहन्नम का रास्ता। खालिदीन फीहा अबदा, अगर वो एक छोटी बच्ची रेप होके वो रो रही है और एक बच्चा सीरियन कहता है कि मैं अल्लाह को जाके बताऊंगा जो कुछ हुआ है, मैं अल्लाह को शिकायत लगाऊंगा। और जो इस वक्त वो चीन में मुसलमान रुल रहे हैं, वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन इतने बड़े मुल्क को पूछे? क्या वो ऐसे ही है? क्या उनका कोई नहीं है? नहीं, अल्लाह है। अल्लाह ताला कहता है ये वो लोग हैं जो खालिदीन फीहा अबदा, इस जहन्नुम में ये हमेशा रहेंगे और हमेशा हमेशा। वकाना ذلك على الله يسيرا, और है अल्लाह पर ये बात आसान। कोई ये ना समझे अल्लाह ऐसी जहन्नुम कहां से बनाएगा, जल जल के तो देखिए आग भी आप जलाएं तो उसका एक लिमिट होती है, उसके बाद आप उसको नहीं भी बुझाएं ना तो वो खुद ही एक दिन बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। शोले कितने भी बड़े हो, आग कितनी भी बड़ी हो, एक दिन साल जलती रहेगी, 2 साल जलती रहेगी, फिर उसके बाद तो खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह कैसे ऐसी आग जलाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए ही हो, हमेशा ही जलती रहे? अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो क्या ना दारिका अल्लाह ही असीरा, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है, तुम इसको मुश्किल ना समझो। ये ना समझो कि इतने सारे लोगों को फिर वो कैसे जला सकता है, फिर वो कैसे इतने सारे लोगों को अजाब दे सकता है, इतनों को तो जलाना भी मुश्किल है, इतनी बड़ी जगह कैसे आएगी? नहीं, ये सब अल्लाह के लिए आसान। वो तो सारी मखलूक को भी जहन्नुम में डाल देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो तब भी अदल वाला ही है, तब भी वो अदल वाला है, क्योंकि इंसान कभी उसका हक नहीं दे सकता। अगर वो अपना हक मांग ले कि तुमने मेरा हक अदा किया है, तो इंसान कभी नहीं कर सकता उसका हक अदा, अशरे असीर भी नहीं कर सकता। इस बात में वो सब कुछ जहन्नुम में डालना चाहे तब भी उसका अदल और इंसाफ है, डाल सकता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उसको पूछने वाला नहीं है कि क्यों, ये किस कानून के तहत, ये क्यों ऐसे किया है, उसको क्यों डाला है, नहीं। कोई उसके आगे खड़े होने वाला नहीं है। और ये भी ना समझना कि जहन्नुम है तो वो फिर वो कितना वहां इतना फ्यूल कहां से आएगा जी, इतने दिन जलने का? नहीं, अल्लाह के लिए बहुत आसान है। या यूहन्नास, ए लोगो, देखें आप फिर सारी इंसानियत को ना एक दावत है, दावतें आम सबके लिए। ये मुसलमानों को ये लगता है कि सिर्फ ये कुरान हमारे लिए, नहीं, ये सारी इंसानियत को पुकारता है। कैट स्टीवंस ने जब इस्लाम लाए थे तो उसके बाद उन्होंने यही कहा ना कि मुझे कुरान के अंदर ये बात इतनी जबरदस्त लगी कि ये तो सारी इंसानियत के लिए, ये तो सारी इंसानियत से बात करता है। तो ए लोगो, कद जाअकुम रसूल बिल हक मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास रसूल आ गया है, हक लेकर आ गया है, यानी कुरान लेकर आया है जो हक है ना, ये कुरान सच्ची बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फामीनू, तो ईमान ले आओ, मान जाओ लोगो, खैरन लकुम। अल्लाह ताला ने किस किस तरह लोगों को दावत नहीं दी, किस किस तरह नहीं लोगों को पुकारा। आप मुझे बताएं किसी जगह खुशखबरियां दे के, देखो तुम ये करोगे, ईमान ले आओगे और साले अमल करोगे तो तुम्हारे लिए इतने बड़े अजर हैं, देखो अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे लिए अजाब है, देखो मान जाओ आ जाओ, फिर भी इंसान ना सुने, फिर भी उनको पता ही नहीं, परवाह ही नहीं। किसी ने ये पढ़ा, किसी ने देखा अल्लाह हमें क्या पुकार पुकार के कह रहा है, आसमानों से तो नहीं अब आवाज आनी, ये तो वही आ गई कयामत तक के लिए इंसानों, तुम्हें बुला लिया अल्लाह ने, इसका क्या जवाब दोगे जब अल्लाह की तरफ से पुकार आती कि मैंने तो रसूल भेज दिया तुम्हारी तरफ हक दे के, ये तुम्हारे रब की तरफ से आया है, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें पालने वाला है, जो तुम्हारा सस्टेनर है, जो तुम्हें कायम रखने वाला है, उस रब ने तुम्हारे पास रसूल भेजा, तुम मान लो उस रसूल को, खैर लकुम, इसमें तुम्हारी बेहतरी है, इसका मतलब अगर नहीं मानते तो तुम्हारी इसमें शामत है, पकड़ होगी इसमें, खैर नहीं है फिर उसमें तुम्हारी, फिर अपनी खैर मनाना, तो मान लो वह इन तकफुरु, और अगर तुम नहीं मानते, इंसान बड़ा बनता है ना, नहीं मैं नहीं मानती, मैं नहीं इसको सही समझती, मुझे नहीं परवाह है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह कहता है ठीक है नहीं परवाह तुम्हें, नहीं मानना तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, इन्ना लिल्लाही मा फिस समावाती वल अर्द, वो शाहाना अंदाज है अल्लाह ताला का कि फिर अल्लाह को क्या परवाह, तुम नहीं मानते, तुम सोचते हो कैसे कई लोग होते हैं इतने नादानी की बात करते ना, इतनी बेवकूफी की बात, हमारी ये दुआ नहीं कबूल हुई, अल्लाह ने तो हमें ये नहीं दिया, अब हमने नमाज ही पढ़नी छोड़ दी, पहले मैं बड़ी नमाज पढ़ा करती थी, अब फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा ठीक है मुझे क्या नमाजों से मिला, तो तुम पागल, तुम अपनी नमाजें छोड़ के समझ रहे तुम अल्लाह के ऊपर कोई बहुत बड़े कोई उसको नुकसान, अल्लाह माफ करे को उसको नुकसान दे रहे, तुम अल्लाह की इबादत छोड़ के उसके आगे झुकना छोड़ के तुम समझते तुम बहुत बड़ी चीज बन गई, और मैं बस जैसे हम इंसानों के साथ मामला करते हैं कि अच्छा उसने मुझे ये चीज नहीं दी मैं भी नहीं उसकी परवाह करती, मैं भी नहीं उससे बोलती, तुम ऐसा अल्लाह के साथ समझ रहे, उसको क्या फर्क पड़ेगा, तुम एक छोड़, तुम 100 नमाजें ना पढ़ो, तुम सारी जिंदगी ना पढ़ो, तुम एक सज्दा भी ना उसको करो, तुमने जो पहले भी पढ़ी थी वो भी ना तुम करती, उसको नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि लिल्लाही मा फिस्समावाती वल अर्द, वो सारा कुछ तो उसका ही है, आसमानों में जो कुछ है वो उसका, जमीन में जो कुछ वो है वो उसका, तुम भी तो जमीन पे ही रहते हो, तुम भी उसके ही हो, वो तो तुम्हारा मालिक है, तुम उसको सज्दा नहीं भी करो तब भी वो ओन करता है तुम्हें, तुम फ्री नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम किसी की मिल्कियत नहीं हो, तुम किसी की मिल्कियत हो, ये हाउ डज इट साउंड कि मुझे कोई ओन करता है, हम तो कहते हैं नहीं मुझे कोई ओन नहीं करता, मैं आजाद हूं, अब आजाद नहीं है, आपका कोई मालिक है, आप उसके गुलाम है, इस चीज को जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, ये ना कहो हाँ कोई इंसानों में से कोई ओन नहीं करता, मगर जिसने तुझे बनाया वो तो तुझे ओन करता है ना इंसान, ये तो समझ ले, तो तुम कुफर करते हो, तुम कहते हो एरोगेंस दिखाते हो, हम नहीं मानते, हमें नहीं ये समझ आती, हम नहीं इसको, हम बैकवर्ड दीन समझते हैं हम ये, तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिल्लाहि मा फिस्समावाती वल अर्द, तो तुम चीज क्या हो ये बताओ, तुम चीज क्या हो, तुम नहीं मानोगे तब भी वो तुम्हारा मालिक है, तुम मिल्कियत हो, मिल्कियत होना छोटी ही चीज होती है, तुम जितना मर्जी नखरा दिखाओ, तुम मान जाओ ना मानो वो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो हदीसे कुदसी है ना कि अगर सारे के सारे इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पहला पहले आदम अलैहि सलाम से आप सोच लें, उनसे लेके आखिरी आदमी तक जो भी इस जमीन पे आना है, और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तर, मेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल की तरह हो जाए, हम समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम का जैसे दिल है सबसे मुत्तकी, उनके दिल की तरह सारे ही हो जाएं, तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरी बादशाहत में कोई फर्क नहीं होता, कोई इजाफा नहीं हो जाएगा कि अल्लाह की बादशाह में बड़ा इजाफा हो गया, वो जी सारे इतने मुत्तकी परहेज बन गए, सारे तहज्जुद गुजार बन गए, सारे अल्लाह की बात मानने वाले नेक और पारसा तरीन लोग बन गए, तो ये सारी दुनिया आप सोचे सज्दे कर रही है, नमाजें पढ़ रही है, नेकी के काम कर रही है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हारा पहला और आखिरी और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तर यानी सारे के सारे इसमें आ गए, मेरे बंदों में सबसे बदबخت इंसान के दिल की तरह हो जाए, मसलन अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि सब शैतान बन जाए, तो अल्लाह ताला कहता है इससे मेरी बादशाहत में किसी मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं हो जाती, और लोगों तुम ये ना समझो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कोई, कि तुम्हारी नमाजें होंगी तो कोई अल्लाह को कोई ज्यादा उसको कोई उसकी बादशाहत में बढ़ोतरी आ जाएगी, कोई ज्यादा इजाफा हो जाएगा, कोई उसके इकतदार में ज्यादा इजाफा हो जाएगा, उसकी हुकूमत में ज्यादा मजबूती आ जाएगी। नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत छोटे हो। अगर इंसान अपनी हकीकत जान ले ना, ये बातें करने से पहले सोच तो ले कि मैं हूं क्या, मेरी हस्ती क्या है। तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो कि उस रब्बुल आलमीन जहानों का मालिक है, जो जहानों का मालिक, उस जमीन का मालिक नहीं है, सिर्फ पूरी कायनात का जो मालिक और उसको चलाने वाला है ना, वो तुम उसको कहते हो हम नहीं नमाज पढ़ते, हमारी दुआएं नहीं कबूल हुई, हम नहीं मांगते, हम नहीं उसका कलमा पढ़ते, हम नहीं उसके रसूल को मानते, उसको क्या फर्क पड़ता है? ना मान जाओ, ना मानो, डजंट केयर। मगर वो खुश नहीं इससे होता, खुश इससे होता है जब तुम उसके बंदे बन के रहते हो, वो इससे राजी होता है, ठीक है। मगर परवाह नहीं उसको, यानी वो बेनियाज है, वो गनी है। अंतुमुल फुकारा या यूहन्नास, ए लोगो तुम वो फकीर, अल्लाह तो गनी है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला। उस इल्म के जरिए उसने, उस इल्म की बिना पर उसने ये कुरान उतारा, उस इल्म की वजह से तुम्हें कहता है कि आमिनू खैर लकुम, ईमान ले आओ तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। सबसे हिकमत वाला तुम्हें ये बता रहा है। हिकमत क्या होती है? अब हिकमत है विजडम, राइट टाइम पे राइट फैसला करना, राइट जगह पे राइट तरीके से राइट रीजंस की वजह से, ये हिकमत है। उसको पता है उसके हर फैसले के बारे में, तो उसको तुम्हारे भी हालात पता है, तुम्हारे से आने वाले आगे की भी हालात पता है, वो आलिम है। ये नहीं कि सिर्फ इस वक्त का हाल पता है, जो पहले गुजर गया वो उसको भी जानता है, जो बाद में आने वाला है उसको भी जानता है। काल कोठड़ी में कोई कुछ कर रहा है, कोई सोचता है, किसी को नहीं पता, ऊपर आसमान है और नीचे जमीन है, और दूर 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 तक कोई जीरो नहीं, अल्लाह उसके भी हाल को जानता है। कोई बैठा हुआ आंसू बहा रहा है, अल्लाह ताला उसको भी देख, और किसका क्या अंजाम है अल्लाह को वो भी पता है, किसके क्या मसले हैं अल्लाह वो भी जानता है, इसकी क्या परेशानी है अल्लाह वो भी जानता है, वो हलीम है। आगे किसी के साथ क्या होना है उसका भी उसको पता है, किसने कहाँ मरना है वो जानता है, किसी ने कहाँ करार पकड़ना है वो जानता है, तुम्हारी मौत की जगह भी उसने लिखी हुई, तुम्हारे उठ के खड़े होने, जहां पे हमने अशर के मैदान में कदम रखने हैं अल्लाह को वो भी पता है, हमारे तराजू में हमारी नेकियां बढ़नी है या घटनी है वो जानता है, हम बिल्कुल सिरात से पार होंगे या नहीं होंगे वो जानता है, हमारा खात्मा किस पे होना है वो जानता है, किसको कलमा नसीब होना है और किसको नहीं होना वो जानता है। कौन अल्लाह की इस पुकार के ऊपर लबई कह देगा वो जानता है, और कौन नहीं कहेगा वो जानता है, किसके दिल में तकब्बुर है वो जानता है, कौन आजी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है वो जानता है,